एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक सेलिब्रिटी की कहानी नहीं है, ये कला, एक जुनून और हाँ, एक बहुत सोचे समझे चुनाव की कहानी है।
हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टीव मार्टिन की किताब बॉर्न स्टैंडिंग अप की।
स्टीव मार्टिन, नाम सुनते ही मतलब कई चीजें दिमाग में आती हैं। जबरदस्त कॉमेडियन, कमाल के एक्टर भी।
बिल्कुल, द जर्क, प्लेन्स, ट्रेन्स एंड ऑटोमोबाइल्स जैसी फिल्में कौन भूल सकता है। फिर वो लेखक, निर्माता और अरे हाँ, वो कमाल के बैंजो प्लेयर भी हैं।
और SNL मतलब सैटरडे नाइट लाइव की होस्टिंग तो खैर लेजेंडरी है उनकी।
सही कहा, लेकिन ये किताब जैसा आपने कहा सिर्फ उनकी कामयाबी की लिस्ट नहीं है, ये ज्यादा गहरा मामला है।
गहरा किस मायने में?
ये इस बात का विश्लेषण है कि कैसे एक कलाकार स्टैंड अप कॉमेडी जैसी कला को बिल्कुल जीरो से शुरू करके दुनिया के टॉप पर ले जाता है और फिर जानबूझकर जब वो बिल्कुल पीक पर होता है उसे छोड़ देता है।
हाँ, ये बात चौंकाती है, मतलब शिखर पर पहुंचकर छोड़ देना। ये सफर जानना क्यों जरूरी है आज?
इसलिए कि ये उस आम सोच को तोड़ती है कि बड़ी कामयाबी या आर्ट में मास्टरी रातों रात मिल जाती है या वो बस किस्मत या टैलेंट का खेल है।
अच्छा,
मार्टिन की कहानी दिखाती है कि ये एक बहुत लंबी, अक्सर तन्हा और बेहद सचेत प्रक्रिया है। इसमें बिल्कुल सिस्टम से मेहनत लगती है, नया करने का जोखिम उठाना पड़ता है और एक जिद चाहिए होती है, हार न मानने वाली।
तो मतलब ये कहानी सिर्फ कॉमेडी फैंस के लिए नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये किसी भी फील्ड में महारत हासिल करने वालों के लिए है, जो क्रिएटिव प्रोसेस को समझना चाहते हैं या बस एक कलाकार कैसे बनता है, खुद को कैसे बदलता है ये जानना चाहते हैं।
और ये सवाल भी उठाती है कि भाई अपनी असली आवाज मिलती कैसे है और क्या उसे पाने के बाद भी रुकना नहीं चाहिए, बदलते रहना चाहिए?
बिल्कुल, तो चलिए सफर के एकदम शुरू में चलते हैं, कैलिफोर्निया, गार्डन ग्रोव, बचपन, और फिर सोचिए सिर्फ 10 साल की उम्र में डिज्नीलैंड में नौकरी।
डिज्नीलैंड बच्चों के लिए तो सपनों की दुनिया, पर उनके लिए शायद कुछ और था।
हाँ, मतलब मजे की जगह तो थी ही, पर उनके लिए वो एक तरह के आर्ट्स की पाठशाला बन गई। पहले गाइडबुक बेची, फिर मैजिक शॉप में।
मैजिक शॉप, वहां जादू सीखते थे?
जादू तो सीखते ही थे, पर उससे ज्यादा जरूरी था ऑडियंस को संभालना सीखना, लोगों का ध्यान कैसे खींचें, कैसे उन्हें चकमा दें, मिसडायरेक्शन जिसे कहते हैं, भीड़ कैसे सोचती है, ये सब वो वहीं सीख रहे थे रोज।
अच्छा, मतलब अनजाने में ही परफॉर्मेंस आर्ट्स की ट्रेनिंग चल रही थी?
हाँ, और वहीं उनकी मुलाकात हुई वॉली बोएग से। वो डिज्नीलैंड के गोल्डन हॉर्सशू रिव्यू के बड़े फेमस कलाकार थे।
वॉली बोएग, उनसे क्या सीखा?
बोएग अपनी टाइमिंग और क्लासिक कॉमेडी के लिए जाने जाते थे। मार्टिन घंटों उन्हें देखते थे, उनकी लय, उनका ठहराव, ये दिखाता है कि मास्टरी सिर्फ करने से नहीं आती, ध्यान से देखने, समझने और फिर प्रैक्टिस से आती है, हजारों घंटे का ऑब्जर्वेशन।
डिज्नीलैंड के बाद वो गए नॉट के बेरी फार्म, वहां बर्ड केज थिएटर में। ये अलग था क्या डिज्नीलैंड से?
हाँ, बिल्कुल अलग। बर्ड केज थिएटर में वो पुराने जमाने के, मतलब 19वीं सदी के मेलोड्रामा होते थे, बहुत बड़ा चढ़ा के एक्टिंग, म्यूजिक के साथ, और वॉडिविल स्टाइल शो भी।
वॉडिविल, वो क्या होता है?
वो एक तरह का वैरायटी शो समझ लीजिए, छोटे गाने, कॉमेडी एक्ट, जादू, करतब, सब मिला जुला कर।
और वहां उन्हें दिन में कई कई शो करने पड़ते थे?
हाँ, और यही चीज, ये दोहराव उनके लिए असली ट्रेनिंग ग्राउंड बना, रोज वही करना पर हर बार थोड़ा बेहतर करने की कोशिश। इसी टाइम उन्होंने अपना बैंजो भी खूब मांजा और छोटी छोटी कॉमेडी रूटीन बनानी शुरू की।
मतलब वो पहले पारंपरिक कॉमेडी सीख रहे थे जिसे बाद में वो तोड़ने वाले थे?
बिल्कुल, पहले नियम सीखे फिर तोड़े, और इसी दौरान उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया, कॉलेज में फिलॉसफी और लॉजिक पढ़ने का फैसला किया। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता एक कॉमेडियन के लिए?
हाँ, लगता तो है, कॉमेडी और फिलॉसफी कहाँ मेल है?
यही तो कमाल की बात है, इसी फैसले ने उनकी कॉमेडी को बिल्कुल नई दिशा दी। फिलॉसफी और लॉजिक ने उन्हें सिखाया कि किसी भी आइडिया की बनावट को कैसे देखें, उसकी बुनियाद पर सवाल कैसे उठाए।
अच्छा,
उन्होंने चुटकुलों को सिर्फ हंसी की चीज की तरह देखना बंद कर दिया।
तो फिर कैसे देखने लगे?
वो उन्हें लॉजिकल प्रोपोजिशन की तरह देखने लगे, मतलब एक आम चुटकुला कैसे काम करता है। एक सेटअप होता है जो एक उम्मीद जगाता है, फिर पंच लाइन आती है जो उस उम्मीद को तोड़कर हंसी पैदा करती है।
हाँ ठीक है।
मार्टिन ने सोचा, क्या हो अगर पंचलाइन हो ही ना, क्या हो अगर हंसी सिर्फ सेटअप और ऑडियंस की उम्मीद के बीच के टेंशन से आए।
ओ अच्छा, यहीं से वो एंटी कॉमेडी का आइडिया आया।
बिल्कुल, यहीं से बीच पड़ा। लेकिन ये आइडिया कॉमेडी क्लब्स में एकदम से चला नहीं। 60 के दशक के आखिर और 70 की शुरुआत में जब वो क्लब सर्किट में आए तो बहुत मुश्किल दौर था।
क्यों, क्या दिक्कत थी?
क्लब का माहौल अलग होता था, शोर शराबा, लोग तुरंत पंचलाइन चाहते थे, जोर का ठहाका। मार्टिन का अंदाज शांत था, थोड़ा सोचने वाला, अक्सर बेतुका, लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ता था।
ओह, सालों तक खाली कमरों में परफॉर्म करना, यह तो बहुत मुश्किल रहा होगा। अकेलापन, सेल्फ डाउट।
यकीनन, किताब में वो उस अकेलेपन और स्ट्रगल का जिक्र करती हैं, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने इसे डेटा गैदरिंग की तरह देखा। किस बात पर हल्की हंसी आई, कहां सन्नाटा रहा, कहां लोग कंफ्यूज हुए।
अच्छा, मतलब फीडबैक ले रहे थे लगातार।
हाँ, और अपने एक्ट को बदलते रहे, सुधारते रहे। उन्होंने जानबूझकर अपना वो एंटी कॉमेडी वाला पर्सोना और पक्का किया।
जैसे वो सिर पर तीर पहनकर स्टेज पर आना, या गुब्बारे से अजीब जानवर बनाना पर चेहरा एकदम सीरियस रखना।
जैसे कोई बहुत जरूरी काम कर रहे हो। मजाक इस बात पर था कि ऑडियंस क्या उम्मीद कर रही है और मार्टिन ठीक उसका उल्टा कर रहे थे। कॉमेडी उनके कॉन्फिडेंस और उनकी बेतुकी हरकतों के कंट्रास्ट से पैदा हो रही थी।
और फिर आया टीवी का जमाना, उसने सब बदल दिया।
हाँ, टीवी बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पहले द टुनाइट शो स्टारिंग जॉनी कार्सन। कार्सन उस जमाने में कॉमेडी के किंग मेकर थे। उनके शो पर आने से मार्टिन को नेशनल पहचान मिली।
लेकिन असली धमाका तो SNL से हुआ ना?
बिल्कुल, सैटरडे नाइट लाइव। वो उस वक्त नया शो था, यंग ऑडियंस में जबरदस्त हिट, और वो ऑडियंस मार्टिन के ह्यूमर के लिए तैयार थी। वो उनका सटायर, उनका एंटी कॉमेडी, उनका बेतुकापन समझ गई।
वो वेल एक्सक्यूज मी वाला कैच फ्रेज तो बहुत चला था ना।
हाँ, वो और कई सारे SNL पर लगातार होस्टिंग ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। टीवी ने उनका वो एक्ट जिसे उन्होंने 10 साल से ज्यादा तराशा था, रातों रात करोड़ों लोगों तक पहुंचा दिया। सही टाइम पर, सही मीडियम।
इसके बाद तो वो मतलब कॉमेडी के शिखर पर थे। वो वाइल्ड एंड क्रेजी गाय वाला पर्सोना एक कल्चरल फिनोमेनन बन गया।
हाँ, उनकी कॉमेडी एल्बम्स लेट्स गेट स्मॉल, ए वाइल्ड एंड क्रेजी गाय प्लैटिनम बिके। ये किसी कॉमेडियन के लिए तब अनसुनी बात थी। वो बड़े बड़े स्टेडियम एरेना में सोल्ड आउट शो करने लगे, रॉकस्टार की तरह।
लेकिन किताब में वो इस कामयाबी के दूसरे पहलू की भी बात करते हैं कि इस बड़े स्केल की एक कीमत भी होती है।
हाँ, वो कहती हैं कि इतने बड़े एरेना के लिए उन्हें अपना एक्ट थोड़ा और लाउड, थोड़ा और सीधा करना पड़ा। जो बारीकियां थीं वो कहीं खोने लगी, कैच फ्रेज पर ज्यादा निर्भरता हो गई।
वो नया करने का मजा कम होने लगा।
हाँ, वो शुरुआती रोमांच, वो छोटे क्लब वाला एक्सपेरिमेंट का मजा, वो फीका पड़ने लगा। उन्हें लगा कि वो खुद को दोहरा रहे हैं।
तो अगर हम उनकी लेगेसी, उनकी विरासत देखें तो वो क्या है? सिर्फ कुछ कैच फ्रेज और फिल्में?
नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा। पहली चीज तो उनका वो क्रांतिकारी एंटी कॉमेडी एक्ट है। उसने कॉमेडी की परिभाषा को ही चैलेंज किया। दूसरा, उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी को सिर्फ जोक सुनाने से ऊपर उठाकर एक परफॉर्मेंस आर्ट का दर्जा दिलाया।
अच्छा।
और तीसरा, उनकी पूरी कहानी ये दिखाती है कि सबसे ओरिजिनल आर्ट अक्सर सालों की गुमनाम, मुश्किल और जुनून भरी मेहनत से निकलती है।
ये तो बहुत अहम बात है। अच्छा, अगर हम उनके कोर फिलॉसफी और वैल्यूज की बात करें तो क्या चीज थी जो उन्हें ड्राइव कर रही थी, क्या सोच थी उनकी?
सबसे बड़ी चीज तो शायद यही थी कि आर्ट में महारत कोई जादू नहीं है, वो सचेत, सिस्टमैटिक और लगातार प्रैक्टिस का नतीजा है, जिसे आजकल शायद डीप वर्क कहते हैं। बिना भटके फोकस के साथ लगे रहना।
और उनका कोर बिलीफ, वो एंटी कॉमेडी वाला?
हाँ, वो कॉमेडी के बने बनाए नियमों को तोड़ना चाहते थे। एंटी कॉमेडी सिर्फ स्टाइल नहीं थी, वो एक तरह का इंटेलेक्चुअल विद्रोह था। पंचलाइन हटा दो, ऑडियंस की उम्मीद को ही मजाक बना दो, बेवकूफी के भेष में एक सीरियस आर्ट एक्सपेरिमेंट।
लाइफ, सक्सेस, फेलियर पे उनका क्या नजरिया था?
वो सक्सेस को एक कहानी की तरह देखते थे, जिसकी शुरुआत है, बीच है और अंत भी होना चाहिए। उनका मानना था कि क्रिएटिव सफर में अकेलापन जरूरी है, उसका हिस्सा है, और आर्टिस्ट को यह सीखना जरूरी है कि वो अपने आर्ट या अपने पर्सोना से अलग भी एक इंसान है।
ये बात बहुत जरूरी है, अपनी पहचान को बाहरी कामयाबी से ना जोड़ना। और कौन सी वैल्यूज दिखती हैं?
कॉन्टेक्स्ट और टाइमिंग का महत्व। वो मानते थे कि उनकी कामयाबी में 70 के दशक के माहौल का बड़ा हाथ था। अमेरिका में तब बदलाव का दौर था, मोहभंग था, विडंबना थी। वो माहौल उनके एंटी कॉमेडी के लिए एकदम परफेक्ट था।
और एक और चीज जो किताब में बार बार आती है, अपने पिता की स्वीकृति की तलाश।
हाँ, उनके पिता ग्लेन मार्टिन अक्सर उनके काम को लेकर उदासीन से रहते थे या आलोचना करते थे। स्टीव मार्टिन लिखते हैं कि ये बात उन्हें चुभती थी, लेकिन शायद अनजाने में ही इसने उन्हें और बेहतर करने, खुद को साबित करने के लिए मोटिवेट भी किया।
हाँ, ये दिखाता है कि बाहरी सफलता के बाद भी वो अंदरूनी मान्यता की चाह कितनी गहरी होती है।
बिल्कुल।
इतनी लंबी और इवेंटफुल जर्नी में कई टर्निंग पॉइंट्स आए होंगे। अगर तीन सबसे अहम मोड़ चुनने हों जिन्होंने उनकी लाइफ और आर्ट का रास्ता बदल दिया, तो वो कौन से होंगे?
मुश्किल चुनाव है, पर मेरे हिसाब से पहला टर्निंग पॉइंट था उनका कॉलेज में फिलॉसफी पढ़ने का फैसला।
हाँ, जिसकी हमने बात की।
हाँ, उसने उन्हें कॉमेडी के स्ट्रक्चर पर सवाल उठाने का वो इंटेलेक्चुअल टूल दिया, एंटी कॉमेडी की नींव रखी, उन्हें सिर्फ फनी होने से आगे सोचने वाला कॉमेडियन बनाया।
सही। दूसरा मोड़?
दूसरा बड़ा मोड़ था टीवी पर मिली सक्सेस, खासकर SNL से। वो एक ऐसा मीडियम था जिसने उनके सालों की मेहनत और यूनिक स्टाइल को एकदम से लाखों लोगों तक पहुंचा दिया।
और वो ऑडियंस तैयार थी उनके एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए।
हाँ, टाइमिंग बिल्कुल सही थी।
बिल्कुल। उसने उन्हें गुमनामी से निकालकर नेशनल स्टार बना दिया।
और तीसरा मोड़ शायद सबसे डेयरिंग था।
हाँ, तीसरा मोड़ था 1981 में, जब वो अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पे थे, दुनिया के सबसे बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन। तब उन्होंने फैसला किया कि वो स्टैंड अप करना बंद कर देंगे।
ये क्यों? इतना बड़ा बदलाव था, लोग तो सक्सेस से चिपके रहते हैं, क्या वो थक गए थे?
नहीं, किताब से यही पता चलता है कि ये थकान या किसी स्कैंडल की वजह से नहीं था, ये पूरी तरह से एक आर्टिस्टिक चॉइस थी। उन्हें लगा कि उनका स्टैंड अप एक्ट अप पूरा हो चुका है।
अच्छा, पूरा मतलब?
उनका कहना था इसकी शुरुआत थी, मध्यतरा और अंत था, उसे और खींचना उन्हें अपनी ही कला के साथ बेमानी लगता। मतलब उन्होंने अपनी क्रिएशन को एक कंप्लीट पीस माना और उसे वहीं खत्म कर दिया।
बिल्कुल। और इस फैसले ने उन्हें फ्री किया, वो अपनी क्रिएटिव एनर्जीज दूसरी तरफ लगा सकें, फिल्में लिखना, एक्टिंग करना, द जर्क उसी दौर में आई, नाटक लिखना, म्यूजिक बनाना।
ये दिखाता है कि कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे कुछ छोड़ना पड़ता है, भले वो कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो।
सही कहा।
स्टीव मार्टिन की कहानी सिर्फ उनके बारे में नहीं है, इसमें हम सबके लिए बहुत कुछ है सीखने को, कुछ ह्यूमन लेसन्स जो शायद सबकी लाइफ से जुड़ते हैं।
बिल्कुल। पहला और सबसे साफ सबक तो यही है कि किसी भी चीज में मास्टरी में टाइम लगता है। आज के इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली दुनिया में ये याद रखना जरूरी है, ये एक लंबा खेल है, धैर्य और लगातार कोशिश चाहिए।
दूसरा सबक इनोवेशन से जुड़ा है। मार्टिन ने दिखाया कि कुछ नया करने के लिए अक्सर पुराने नियमों पर सवाल उठाना पड़ता है, उन्हें तोड़ना पड़ता है, डीकंस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं, किसी चीज को खोल कर देखना अक्सर नए रास्ते दिखाता है।
तीसरा सबक है फेलियर को देखने का नजरिया। मार्टिन ने सालों तक ऑडियंस की ठंडी या कंफ्यूज्ड रिएक्शन को पर्सनल हार नहीं माना, उसे डेटा की तरह यूज किया। क्या काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, इससे अपने एक्ट को बेहतर बनाया।
चौथा सबक है ये समझना कि कब डायरेक्शन बदलना है, कब पिविट करना जरूरी है, करियर हो या कोई प्रोजेक्ट। और पांचवा, जो शायद सबसे मुश्किल है, अपनी पहचान, अपनी सेल्फ वर्थ को बाहरी तारीफ या बुराई से अलग रखना, एक इंटरनल स्कोर कार्ड बनाना।
हाँ, और ये सारे स्ट्रगल, पहचान की तलाश, कुछ ओरिजिनल करने की कोशिश, सक्सेस की अपनी चुनौतियां जैसे अकेलापन या क्रिएटिव ब्लॉक, ये सब यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस है। मार्टिन की कहानी दिखाती है कि फेम के पीछे भी वही बुनियादी मानवीय इच्छाएं, असुरक्षाएं होती हैं, जैसे पिता की मंजूरी की वो चाहत।
तो इस पूरी बातचीत के आखिर में अगर हमें तीन सबसे जरूरी बातें कहनी हो जो सुनने वाले अपने साथ ले जा सकें, तो वो क्या होंगी?
पहली, एक इमोशनल इनसाइट, क्रिएटिव सफर या किसी भी पैशन को फॉलो करने का रास्ता अक्सर बहुत अकेला होता है। बाहरी कामयाबी और तालियों के बीच भी अंदरूनी मान्यता की गहरी जरूरत, चाहे वो पेरेंट्स की हो, मेंटर की या अपनी खुद की नजरों में वो बनी रह सकती है, वो हमें ड्राइव भी करती है और परेशान भी।
दूसरी, एक इंटेलेक्चुअल इनसाइट।
हाँ, कि सच्ची नवीनता, ओरिजिनैलिटी अक्सर किसी फील्ड की सबसे बेसिक मान्यताओं, उसके फंडामेंटल नियमों पर सवाल उठाने और उन्हें चैलेंज करने से आती है, जैसे मार्टिन ने पारंपरिक जोक स्ट्रक्चर को तोड़कर एंटी कॉमेडी बनाई। किसी भी फील्ड में बड़ा बदलाव लाने के लिए शायद उसकी जड़ों को हिलाना पड़ता है।
और तीसरी, एक यूनिवर्सल इनसाइट सबके लिए।
वो ये कि महारत बेशक लंबे सचेत लगातार अभ्यास से आती है, लेकिन ये जानना कि कोई काम, कोई प्रोजेक्ट या जिंदगी का कोई फेज कब पूरा हो गया है, ये उसे शुरू करने जितना ही जरूरी है। कभी कभी सबसे बड़ी समझदारी और हिम्मत इसी में होती है कि आप जबरदस्त कामयाबी से भी तब पीछे हट जाएं जब आपको लगे कि कहानी पूरी हो गई है। अपने काम का अंत पहचानना और उसे स्वीकार करना भी एक कला है।
ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या हम अपनी जिंदगी या काम में ये पहचान पाते हैं कि कब किसी चीज का एंड आ गया है, और क्या हम उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट करके आगे बढ़ पाते हैं? ये सवाल शायद स्टीव मार्टिन की कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है सोचने के लिए। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।